虽然我将来的东西是什么，那是他没有人不知道的，我是他的，我是他的人，我的马蹄的说是有我真的是他的人的那天那天的将是他是他的人的人能想能吸取的书法在中坚持的他能随时而无端而无路能让我们的所有的人的人的人的人的人的人的人的
नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में जय श्री प्रभुपाद। दसवां स्कंध प्रारंभ करते हुए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, क्योंकि नवमा स्कंध के चौबीसवें अध्याय में भगवान कृष्ण का वर्णन है थोड़ा सा जन्म का प्रश्न, तो इसमें उन्होंने बताया है कि भगवान कृष्ण गृहस्थ जीवन का आदर्श दिखाने के लिए मथुरा और बाद में द्वारका चले आए, पर अति संक्षेप में इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। हे गुरुदेव, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन किया, वैसे ही विस्तार के साथ में यदुवंश का वर्णन सुना है। अब मैं इसी वंश में अवतीर्ण भगवान कृष्ण का चरित्र सुनना चाहता हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सौशून्य भवता, हे मुनिवर, आपने वंश विस्तार का वर्णन किया। वंश विस्तार मतलब वंश में प्रधान उसके बाद पुत्र पौत्र यानी बहुत वर्णन किया है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि पहले सूर्य का नाम क्यों लिया महाराज परीक्षित ने, नहीं चंद का, सोम सूर्य, सोम और सूर्य के वंश का विस्तार किया। इसका कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि सोम वंश अधिक गरिमा में है, इसी वंश में स्वयं साक्षात भगवान अवतार लिए। सूर्य वंश भी अद्भुत है, सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं का आपने वर्णन किया है, परम अद्भुतम। इन दोनों वंशों में अद्भुत शरीर वाले राजा हुए हैं, परमाद्भुत वंश। जबकि यहां समय नहीं है कि इनका विस्तार किया जा सके, परंतु दोनों वंशों में विशिष्ट राजाओं का जो अद्भुत चरित्र है वो क्या कहा जाएगा। नौम स्कंध में आप लोगों ने पढ़ा होगा सूर्य वंश का वर्णन, तो उस वर्णन में सुदेव गोस्वामी ने कहा कि सबसे पहले सत्यव्रत महाराज हुए, जो भगवान के द्वारा मनु महाराज के पद पर नियुक्त किए गए। भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के हैग्रीव दैत्य का वध करके और विवस्वान को मनु महाराज का पद दिया। इस विवस्वान की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है, इमं दिवस होते योगम पुरान हमदयम। मैं इस गीता का ज्ञान पहले विवस्वान को दिया। विवस्वान मनवे प्राण, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया। और मनु ने इक्ष्वाकु महाराज को दिया। मनु इक्ष्वाकवे भवे एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि योगिनी। इस दिव्य ज्ञान को राजर्षियों ने परंपरा से प्राप्त किया। सबसे पहले भगवान के द्वारा उपदेश हुआ इस ज्ञान का। भगवान ने विवस्वान को दिया। विवस्वान सूर्य का एक नाम है। विवस्वान इमं विवस्वते योगम, इस योग को दिव्य ज्ञान को मैं इस विवस्वान को दिया। विवस्वान मनु को दिए, इसी वंश में उत्पन्न मनु हुए सत्यव्रत महाराज। सत्यव्रत नाम दिया भगवान ने इसके बाद सुदेव जी कहते हैं कि इसी सत्यव्रत को सूर्य ने ज्ञान दिया और इसके बाद इक्ष्वाकु महाराज ज्ञान प्राप्त किया। इक्ष्वाकु बहुत तो काफी राजा थे। सत्यव्रत के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया। इमं राजर्षयो विदुः इस ज्ञान को ग्रहण किया राजर्षियों ने, श्रेष्ठ राजाओं ने, क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। धर्म की रक्षा में जरूरी होता है दुष्टों का दमन करना, और यह कार्य क्षत्रिय ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान प्रायः द्रव्य अवतार लेते हैं मनुष्य का अवतार, जैसे क्षत्रिय कुल में लेते हैं, क्षत्रिय अधर्म का उल्लंघन करने वालों को दंड भी देते हैं, इसीलिए भगवान का अवतार प्रायः क्षत्रिय कुल में होता है। ऐसे ब्राह्मणों में भी उनका अवतार हुआ, ऐसे भगवान के सुधार बहुत मार काट किए, 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया। उनके पिता का वध हो गया था, इस कारण उनके माता रेणुका छाती पीट पीट करके रो रही थी। 21 बार वो विलाप की थी, रोई थी, छाती पीटी थी, तो भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि पिता की हत्या करने वाले क्षत्रियों का मैं वध करूंगा। इक्कीस बार वध किया घूम घूम करके, 21 ब्राह्मण रूप लाया। इस पर एक भक्त पूछा था कि इसके बाद क्षत्रिय बच के हुए हैं, मैं बताया कि ये तो सृष्टि है चलती रहती है, 22वें बार वध करने के लिए छोड़ दिया। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश के विशिष्ट राजाओं का जो परम अद्भुत चरित्र है, इस प्रकार से सतवत महाराज जो भगवान के अवतार के लिए प्रयास किए, इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। ऋषियों के साथ सतव्रत महाराज को नौका पर बैठाकर पूरा प्रलय समुद्र में विहार किया। प्रलय पयो भी जले धृतवा न शिवेद विहित महित चरित्र फिर सब भीत लीन शरीर जय जगदीश। जयदेव महाकवि ने दशावतार में सबसे पहले मत्स्य भगवान का स्मरण किया, इसको गलत अपनाए हैं। नीचे रह कर के इसको ऊपर किए, इसको ऊपर विवस्मान के पुत्र हुए जो मनु महाराज बने। मनु महाराज ने कई पुत्र प्राप्त किए, सबसे बड़ा नाम था उसका सिदुम ने। सिदुम ने जन्म के पहले उसकी माता ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करके किया कि हमको बेटे चाहिए, ऐसा मंत्र पढ़िए इनको कन्या प्राप्त हो। जब कन्या हुई तब मनु महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा, ये संकल्प तो पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ था, कन्या कैसे हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए, वेद का यह विपरीत फल नहीं होना चाहिए, या तो आप लोगों के मंत्र पढ़ने में दिक्कत कुछ हुआ या शुद्धि यज्ञ में हो गई। तब ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज रानी ने हम लोगों से यही कहा था कि कन्या प्राप्ति होनी चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि रानी का एक मत होगा, राजा का जी राजा की जो इच्छा होगी उसी को कहती होगी, तो हम लोगों की गलती हुई कि फिर आपसे पूछा नहीं, रानी का प्रस्ताव सुन करके वो ऐसे ही संकल्प किया। तब महाराज सत्यव्रत बहुत न खुश हुए, फिर उन्हें अपने गुरु वशिष्ठ देव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव किसी तरह से इस लड़की को लड़का बनाना चाहिए, क्योंकि यह लड़की राजा के पद पर तो होगी नहीं। तब वशिष्ठ जी भगवान श्री हरि का यजन किए, भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि इस लड़की को लड़का बना दिया जाए, तो भगवान की कृपा से दोनों लड़का हो गए। लेकिन एक बार हिमालय में गया इस सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ, तो एक क्षेत्र में जाते ही गुजरात क्षेत्र था, वहां प्रवेश करते ही वो पुनः स्त्री हो गया, सिद्धों में पुनः स्त्री हो गया, और उसके साथ जितने भी मंत्री सेना वगैरह थे सब लखनऊ पुलिस हो गए, महिला पुलिस हो गए, सरकार लिंग विभागय हो गया। जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए, ऐसा क्या प्रभाव था उस क्षेत्र का। एक बार की बात है, ऋषि लोग जा रहे थे भगवान शिव शंकर का दर्शन करने, तो उन्होंने देख लिया कि भगवान शंकर पार्वती जी के साथ रम रहे हैं, तो ऋषि लोग को देख करके पार्वती जी झटपट उठ गई, तो शिव जी की गोद में बैठी थी, ऋषि लोग नहीं लोग आए, उनको देखा भगवान शिव ने कि ये लोग लौट रहे हैं, उन्हें केदारनाथ की अपेक्षा बदी नारायण चले गए, नर नारायण के आश्रम में। तो भगवान शिव ने कह दिया उस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र में कोई भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। भगवान शंकर के वरदान से ऐसी व्यवस्था हो गई। उस समय उस रिजर्व क्षेत्र से पुरुष बहुत बचते थे, कोई भूल करके नहीं जाता, जब सुदुम में स्त्री हो गए तब पुनः भगवान परशुराम ने वशिष्ठ जी से राजा विनय कर लिया, क्योंकि चाहते थे कि उनके बाद उनका प्रतिनिधि पुरुष बने। तब वशिष्ठ जी ने निहरा किया शिव जी से। भगवान शिव ने कहा, मेरी बात तो अमोघ उठी नहीं हुई, लेकिन मैं तो व्यवस्था दे रहा हूं, एक महीना ये स्त्री रहेगी और एक महीना पुरुष, एक ही देह में, या पुरुष एक महीना पुरुष रहेगा और दूसरे महीने में स्त्री हो जाएगा, क्योंकि हमें अपनी बात को सत्य रखना है। ये व्यवस्था देकर के पा करके निश्चिंत हो गए राजा सुदूम ने। और जब सुदूम ने लड़की बने थे पुनः एक बार वे बुद्ध देव को देख, बुद्ध देव बुध मन ग्रह जैसे मंगल बुध होता है, तो बुध है देव जो चंद्रमा के पुत्र थे, वे मोहित हो गए उस लड़की पर। बुध देवता के मोह से संग हुआ सुदुम्न का स्त्री के रूप में, तो उससे एक पुत्र हुआ बहुत तेजस्वी, उसका नाम हुआ पुंडवा। महाराज पुंडवा चंद्रवंशी थे और उनकी मां सूर्यवंशी। अतः वे चंद्रवंश के ही माने गए, क्योंकि चंद्रमा के अंश से बुध और बुध से पैदा हुए। ये अद्भुत चरित्र है, ये कहीं शरीर से स्त्री रहना और पुरुष में, और चंद्रवंश के राजा उज्ज्वल हुए बहुत प्रतापी राजा। ये मनुष्य थे, पृथ्वी पर प्रयागराज में रहते थे, प्रयागराज इनकी राजधानी थी, झूसी एक स्थान है आज भी, वही इनकी राजधानी झूसी। एक बार स्वर्ग लोक से उर्वशी अपने आप आए इनके पास, उर्वशी जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, उनके पास आई। उसको देख करके महाराज के नेत्र खिल गए, उन्होंने तुरंत प्रस्ताव रखा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, या तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। यह सुन करके उर्वशी कहती है, महाराज आपके विषय में सुन करके आपको देख करके कौन स्त्री धीरज रख सकती है, मैं आपके पास आई हूं आपके साथ विहार करूंगी। ऐसा अद्भुत चरित्र की स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अपने आप आई इनके पास, पर इनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। मनुष्य से भूल जाता है कि यह जीवन क्षणिक है, इसी दिन में सब विहार वैभव समाप्त होने वाला है। महाराज पुनर्वा भूल गए, उर्वशी ने एक शर्त रखा था, आपके पास मैं दो भेड़ के बच्चे छोड़ रही हूं, इनकी रक्षा कीजिएगा, धरोहर रख रहे हैं। तो राजा ने ये विचार नहीं किया कि इस शर्त के पीछे क्या रहा, वो तो कुछ ही वर्ष के लिए आए थे, इसको तो जाना था, इसीलिए शर्त रख दिया। दूसरा सब मैं मैथुन के अलावा आपको नग्न नहीं देखना चाहती, मेरे सामने नग्न होइएगा केवल स्त्री संग के समय, अब बाकी समय में कहना ही, मैं आपको नग्न नहीं देख पाऊंगा, मेरा भोजन होगा केवल घी, गाय का घी। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर दिया, उनको किस चीज की कमी। कुछ वर्षों के बाद इंद्र सभा में बैठे थे, लगे कहने गंधर्वों से, उर्वशी के बिना हमारा स्वर्ग फीका लग रहा है, उसको लाओ। जो लोग पता लगाए उर्वशी प्रयागराज पहुंची थी, महाराज पुर्वा के साथ वे लोग भेड़ के बच्चे को हर लिए, भेड़ के बच्चे जब बे या मे करने लगे तो उर्वशी तीखा प्रहार करने लगी राजा के पुरवापन, तुम नारी की तरह सो रहे हो, तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं है, मैं बेकार तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। तुम एक अबला हो, तुम्हें कोई बल नहीं है, इतने बड़े राजा को इतना कठोर शब्द बोल रहे, जब भेड़ को लेकर के गंधर्व जा रहे उर्वशी की बात से तिलमिला करके, महाराज पुरवा भेड़ के बच्चों को लौटाने के लिए गए। जब वे उनके पास पहुंचे तब ये नर्व चमकने लगे, उनका शरीर चमकने लगा, पूरा लाइट हो गया। उस समय राजा पुरवा होश में नहीं थे, नग्न थे, उस प्रकाश ने उसी ने देखा कि ये नग्न है इस पर इसमें बस इतने नहीं। ये पृथ्वी पर घूमते थे पागल की तरह। एक बार पूरी क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी दिखाई पड़ी तो राजा पूरा खाना है तुमको न पा करके मैं मर जाऊंगा, मेरा यह शरीर भेड़िया खा जाएंगे, तुम एक रात रुको। लेकिन उर्वशी कहती है मैं एक क्षण नहीं रुकूंगा। अब हो गए उर्वशी खाती है मैं साल में एक दिन आपके पास आऊंगी। एक रात आपके साथ हमारे सामने हो गए सामने एक रात और आपके संग से मुझे और भी प्राप्त पुत्र प्राप्त होंगे। इसका अर्थ है कि उर्वशी गर्भवती हो चुकी देवी है ना, गर्भ को मनमाना समय तक रख सकते थे। तो कहती है कि आपसे हमको और पुत्र प्राप्त होंगे। अभी मैं अंतरवर्ती हूं गर्भवती हूं, कहते हैं महाराज आप राजा हैं पुरुष हैं धीरज रखिए, आपका शरीर ऐसे नष्ट नहीं होना चाहिए, इतना अधीर मत होइए। यदि आप मुझे चाहते हैं जो ब्रह्मधर्मों से विनय के लिए ब्रह्मों के द्वारा एक लकड़ी प्राप्त हुई उसी को महाराज पूरा उर्वशी मान करके लिखते रहते थे। हम यज्ञ किए, यज्ञ करके उर्वशी का फिर से प्राप्त किए, परंतु श्री नारद जी के कृपा से उन्हें स्वर्ग से वैराग्य हो गया, उर्वशी का मोह छूट गया और वे आत्मा राम होकर के पृथ्वी पर उदाहरण करने लगे। कहीं उनकी आसक्ति नहीं रह गई। जिस उर्वशी के लिए वे रोते थे उसको नरक समझ करके उन्होंने त्याग दिया मन में। इस कथा को स्वयं भगवान उद्धव जी से कहे हैं, कहता है कि उद्धवा मेरा भक्त होकर के सारी आसक्ति से मुक्त हो गए और मेरी भक्ति में रमते हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे, स्वर्ग छोड़ दिए पृथ्वी पर आ गए। इस दृष्टि से सबसे सुंदर स्थान है पृथ्वी है, पृथ्वी में भी भारतवर्ष। ये राजा दुर्वा का चर्च कहा थोड़ा सा कहा, इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जजाति, इनका भी चरित्र अद्भुत चरित्र है। इनका दो विवाह हुआ, एक ब्राह्मणी से और एक क्षत्रिय से। दो विवाह क्यों हुआ था इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। एक बार सूत्राचार्य की पुत्री देवयानी और विश्वकर्मा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा सखियों के साथ उद्यान में विहार कर रहे थे। बहुत सुंदर उद्यान था, उसमें भ्रमण करते करते उनको नहाने की इच्छा हो गई। स्त्रियों में आपस में लज्जा नहीं होती, मैं अपने अपने वस्त्र को सरोवर के किनारे रह करके स्नान करने लगे। तब तक दैव इच्छा से भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैल पर चढ़े गए, उस ओर आ गए। तो भगवान शिव को देख करके इनको बड़ा मज्जा हुई, इन लड़कियां निकल करके सरोवर से झटपट अपना वस्त्र पहनने गई। शर्मिष्ठा की साड़ी देवयानी के साड़ी से एक रंग की थी, मेल कर गई। इस कारण से शर्मिष्ठा देवयानी को साड़ी को पहन ली। जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, गुरु पुत्री की साड़ी को पहन ली। इसको देख करके देवयानी बहुत क्रोधित हुई और दांत पीसते हुए कि तुम असुर वंश में चली गई और हम तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ धर्मवंशी ब्राह्मण हैं, तुमने कैसे हमारा साड़ी पहन लिया। जैसे कुटिया जगह का घी पी जाए वैसे तुम मेरा साड़ी टच किया। ये सब घटना हुई दैव इच्छा से, किसी का प्लान नहीं। आपस में झगड़ा होने लगा देवयानी और शर्मिष्ठा में। शर्मिष्ठा मजबूत थी, सक्रिय थी, उसने बाह पकड़ करके जबरदस्ती देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। बहुत ऐसा होता है, पहले प्रेम से घूम रही थी उद्दल में और क्षण भर क्षण भर में ही भगवान शिव ने झगड़ा लगा दिया, वे लड़ गई और झोटा झोटी करके उसको पटक दिया, घर चली गई, कुछ बताए नहीं। भगवान की ऐसी प्रेरणा थी। महाराज जजाति को प्यास लगी, तो प्यास से व्याकुल होकर के वे वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे कुआं के पास आए और कुआं में उन्होंने देखा कि परम सुंदरी लड़की गिरी है। उसको देखते ही इनको इच्छा हो गई विवाह करने की। तो तट को उन्होंने खोदा, धाम किया, किसी तरह से उपाय से अपने चादर से गांठ बना करके उस कुएं में डाला और देवयानी का उद्धार किया। जब वो कुएं से बाहर आई अंतिम सीढ़ी पर, उसने महाराज का हाथ पकड़ा पानी ग्रहण किया। कुएं से बाहर आने पर उसने कहा कि महाराज आपने हमारा पानी ग्रहण किया है, ये आपके प्लान से, हमारे प्लान से नहीं, समाज के प्लान से नहीं, ये भगवान का प्लान है। हमको क्या पता था कि आप कुएं पर आएंगे। तो ये ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ नियम संबंध है, आप हमको स्वीकार। तो महाराज जयजाति कहते हैं आप एक ब्राह्मणी हैं, ये शक्ति मुसलमान कैसे हो सकते। तो उसका कहा कि मैं ब्राह्मणी हूं लेकिन मेरा ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा। तो इस पर कथा सुनाने लगी। एक बार गुरु बृहस्पति जी के पुत्र हमारे पिता के यहां पढ़ने आए थे, मृत संजीवनी विद्या। देवता लोग भी नहीं जानते हैं इस विद्या को, देवताओं के गुरु भी नहीं जानते। उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया था शुक्राचार्य, जबकि शुक्राचार्य ने और बृहस्पति जी बहुत टेंशन में तो झगड़ा रहा। पर पहले के लोग विद्या दान करने में उदार थे, पढ़ाए शुक्राचार्य जी विद्या दिए बृहस्पति के लोग पुत्र को। जब गुरुकुल में रह रहे थे उनका नाम कच्छ था, तो कच्छ बहुत सुंदर था, इसलिए देवयानी इच्छा हो गई विवाह करने की। उसने प्रस्ताव रखा कि आप विवाह के योग्य हो गए हैं, हमारा आपका कुल एक है, कहता है आप हमसे विवाह कर लें। कच्छ ने कहा नहीं, तुम गुरुपुत्री हो, मैंने आचार्य शुक्र से बहुत बड़ी विद्या पढ़ी है, तो इसलिए तुम गुरु के समान ही पूज्य हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। यह सुनते ही देवयानी ने कहा कि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करते हो, मेरे पिता के द्वारा पढ़े विद्या सब भूल जाओ। उन्होंने कच्छ को साथ दिया कि ब्राह्मण के मेरे पिता के द्वारा पढ़ी हुई विद्या मेडिकल साइंस टोटल भूल जाओ। तब कच्छ ने साफ दे दिया हमको, देवानी कहती है किसी भी ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो महाराज जजाति से देवानी कहती है किसी भी हालत में ब्राह्मण से मेरा विवाह नहीं होगा। मैंने सोचा कि ब्राह्मण के बाद सुक्तिय का नंबर, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहे हैं जब मेरा विवाह ब्राह्मण से होगा ही नहीं, ये ब्राह्मण का ही साप है, कच्छ का बृहस्पति जी के पुत्र का साप, तो इसलिए आप क्षत्रिय हैं हमसे विवाह कर लेंगे। सब तरह से विचार करके महाराज जयजाति समझ गए कि ये ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि अकस्मात मुझे इस उपवन में प्यास लगना, प्यास लगने पर कुआं के पास आना और कुएं में गिरी हुई इस लड़की को देखना, ये सब ईश्वर के का विधान था। महाराज आपने ये भी सोचा बेचारी का विवाह होगा ही नहीं, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का साप है, तब उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं माना, कह दिया आपके पिताजी कन्या दान करेंगे तो मैं आपसे विवाह करूंगा। इन्हीं महाराज जाति के जदू महाराज पिता थे, इनके पांच पुत्र थे, जदू अनुम दुहि तिरवसु और पूरी। जब कुएं से निकाल ले गए देवयानी तो गई अपने पिता के पास रोते हुए, कुएं से निकली तो हर रोते हुए गई, रो रो करके अपने दुख सुनाने लगी कि पिताजी मैं तो मर गए थी, कुएं में भी गिरा दी थी सर्विस था, इसी तरह से मैं बच गई। महाराज जजाति आए कुआ के पास और उन्होंने मेरा उद्धार किया, मैं बच गई थी नहीं, तो खूब बढ़ा चढ़ा करके सुनाई पिताजी से। तुरंत राजधानी से निकाल रहे शुक्राचार्य तो यह खबर पाते ही महाराज विस्परवा मंदिरों के साथ मनाने गए, रास्ते में मनाए, बहुत प्रयास किए कि गुरु जी आप बुला हुआ है, अन्यथा देवता सुनते, इन राजे देवता सुनते कि शुक्राचार्य छोड़ दिया है असुरों को, वे तो हम पर आक्रमण करके हमारा सर्वनाश कर देंगे, ब्राह्मण कृपालु ठहर रहे, उन्होंने मार दिया है बेस्पर्धा विवाह पर। उन्होंने विवाह के करते हुए महाराज जजाति से कुछ शर्त किया, महाराज विवाह तो हो रहा है लेकिन आपसे एक बात है कि आप कभी भी शर्मिष्ठा के बेड पर मत जाइए, उसे सजा पर मत जाइए, अर्थात उसका संग मत कीजिएगा। लेकिन एक दिन की बात है, महाराज जाती है तो शर्मिष्ठा के भी पति थे, अतः शर्मिष्ठा ने एक दिन प्रार्थना किया राजा से कि महाराज धर्म के अनुसार मैं आपकी पत्नी हूं, पिता है आप मुझे पुत्र दीजिए, मेरी वध सुनी है, मैं चाहते हूं कि प्रवती बनू, कभी भगवान की इच्छा समझते थे, महाराज जगह थे, भगवान को प्रणाम किए और शर्मिष्ठा के बेड पर गए। नारा जजाति की तरह ये दोनों पुत्र परम सुंदर थे, उनकी आंखें, उनकी आकृति, भाषा सब महाराज जजाति जैसे थे। उसको देख करके देवयानी समझ गए कि ये राजा के पुत्र हैं। तब वह पति के को छोड़ करके देवयानी जजाति महाराज को छोड़ करके अपने पिता के यहां जाने लगी। कहते रह गए कि तुम्हारे पिता एक परम तेजस्वी ब्राह्मण है, तुम लौट जाओ। लेकिन नहीं लौटी, स्त्रियां बहुत जिद्दी होती हैं, पति के यहां से लंज होकर के पिता से शिकायत करने चली गई कि आपने कहा था शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न नहीं करना, लेकिन इसके दो पुत्र हो गए। तब शुक्राचार्य ने तुरंत कहा महाराज जजाति से, तुम इतने बड़े कामी हो लंपट, तुम इंद्रिय संयम नहीं कर सकते, तुमने जवानी के नशे में शर्मिष्ठा का संग किया। जब तुमको एक स्त्री थी तुमको संतोष नहीं हुआ, और कितनी बड़ी चेतावनी के बाद भी तुम शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न किए, ये सब जवानी के कारण है। अतः अरे मूर्ख, तुम्हें तुरंत बुढ़ापा आ जाए। शुक्राचार्य की बात सुनते ही जाते महाराज वृद्ध हो गए, बिल्कुल जैसे 90 साल का 95 साल वाले वृद्ध हो गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे, सिर कांपने लगा, और उस दशा में भी कहते हैं, मैं अभी तृप्त नहीं हूं आपकी पुत्री से, कांप रहे हैं वृद्धावस्था के, क्षण भर में क्रोध हो गए, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो जाने पर काम का मसल कर जाता है, कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते। ये कहते रह गए, आपकी पुत्री से मैं तृप्त नहीं हूं। फिर शुक्राचार्य ने क्षमा नहीं किया, मैं रोते रह गए महाराज से आपकी गिराते रहे, लेकिन उन्होंने अपना वचन लौटाया नहीं। ससुराल अपने ससुर के यहां गए थे, बिल्कुल युवक और लौटे वृद्ध बन कर, उस ब्राह्मण को दया आ गई राजा की क्या दुर्दशा देख। राजा के गुंडल पर उनका चित्त पिघल गया, उन्होंने कह दिया ठीक है मैं व्यवस्था दे रहा हूं, तुम अपने पुत्रों के पास जाओ, जो पुत्र इस बुढ़ापा को ले ले और अपनी जवानी दे दे तो उसकी जवानी तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हारी बुढ़ापा चली जाएगी। तुम्हें लौटे आए आकर के उन्होंने सबसे पहला पुत्र जदु महाराज से कहा, बेटा अपने नाना के द्वारा दी हुई बुढ़ापा को ले लो और अपनी जवानी दे दो। जदु महाराज परम भक्त थे, भगवान से ही प्रेम करते थे। उन्होंने विचार किया कि पिताजी जवानी लेकर के तो कोई विषय होने रहेंगे, पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान के मंदिर में आयोजन करना, प्रसाद बनाना, भगवान की विविध सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी, अतः पिता की बात को नहीं मानना ही ठीक है। इसकी व्याख्या कब आएगी, यदो से धर्म सीधा से जितना मैं सकता हूं। लेकिन तीन जो पुत्र थे अनुजी और तिरुवसन, इनके बारे में सुदेव गोस्वामी ने कहा है ये दुष्ट थे, जवानी को नित्य समझते थे, जवानी का दिन बहुत दिन नहीं रहता, बुढ़ापा आ ही जाती है, ये अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जवान रहना चाहते, पिता के प्रार्थना करने पर ये साफ कर दिए, हम नहीं चाहते, हम नहीं बुढ़ा होना चाहते, तुम्हारे कर्म का फल है इसे भोग चाहे कुछ कर। तब अंतिम सबसे छोटे पुत्र पुरुष से कहा महाराज जाती ने, बेटा तुम अन्य भाइयों की तरह मुझे जवाब मत दो, अपने नाना के द्वारा दी गई बुढ़ापा को ले लो और अपनी जवानी ले लो। गुरु महाराज पितृभक्त थे, सबसे छोटे उम्र के लेकिन सबसे गुणवान। वे कहते हैं पिताजी इस शरीर तो आपका ही दिया हुआ है, वास्तव में शरीर को उत्पन्न करने वाले माता पिता हैं, कुछ भी करके इनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो इस समय पूर्व महाराज पुत्रों की श्रेणी बता रहे हैं, उत्तम चिंतितं कुर्यात् प्रोत्कारित मध्यम, उत्तम पुत्र वह है जो पिता के इच्छा को जान करके पूरा कर देता है, सेकंड क्लास का पुत्र वह है जो कहने पर आज्ञा मानता है, कहना पड़ता है, पिताजी मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र नहीं बन सका, मुझे तो आपकी इच्छा जान करके आपके बिना कहे जवानी दे देनी चाहिए, लेकिन आपको कहना पड़ा, इसका भी बहुत बड़ा खेद है। उसी प्रसंग में गुरु महाराज ने कहा है यदि पिता प्रसन्न होगा तो उसकी कृपा से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, वास्तव में इस देह के जन्मदाता माता पिता है, उनका सूर्य सेवा करके इस वीर से मुक्त होना चाहिए। तनाय जजात ही यौवन भय पितृ आज्ञा अयसन भय, पिता के आज्ञा से गुरु अपनी जवानी को दे दिए, और पिता की आज्ञा से उन्हें कोई पाप नहीं लगा और अजस भी नहीं था, उपकीर्ति नहीं हुई। आज्ञा सुंदरवंशन चरितम परमाधता, यही परम अद्भुत चरित्र है। और सूर्य वंश में निष्पुत्र हुए इक्ष्वाकु महाराज के, जिनका नाम भगवान गीता में बोले मनोदीक्षा कर बोले, मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया। तो इक्ष्वाकु महाराज प्रथम पुत्र नहीं थे, सुदूर आदि पुत्र थे, लेकिन जमुना जी ने महाराज इक्ष्वाकु ने बहुत तपस्या किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनको पुत्र प्राप्त हुए 10 पुत्र, जिनमें इक्ष्वाकु प्रधान है। इक्ष्वाकु महाराज के एक पुत्र थे सब मनु महाराज, एक नर गौशाला में गायों की रक्षा कर रहे हैं, वन में गौए रहती थी, रात्रि के समय जग करके साध गोरक्षा कर रहे थे। रात का समय था, चंद्रमा भी नहीं हुए थे, कोई तारा नहीं हुए थे, प्रकाश नहीं था, अंधकार छाया था। इसी समय एक बाघ गाय को पकड़ लिया, गाय चिराई किसी चिल्लाहट को सुन करके रात को उठे प्रसाद महाराज, और अंधकार में ये अपने समझ से मारे बाघ को, लेकिन तलवार लग गया गाय के गर्दन पर, गाय मर गई। बाघ खून बहता हुआ गया था, जब सवेरा हुआ तब सब लोगों ने देखा कि तो बाघ गाय को कौन मारा है, प्रसाद ने स्वीकार किया कि हमसे भूल से हो गए, अंधकार में मैं देख नहीं सका, बाघ समझ करके मारा, लेकिन तलवार का नोक से काम करना गया और तो खून बहाता हुआ भाग गया, गाय मर गई। गुरु वशिष्ठ देव से पूछा गया अब इसने क्या किया जाए, तो उन्होंने साफ कर दिया ये क्षत्रिय नहीं शूद्र है, असावधानी से गाय को मार दिया। तय शूद्र माना जाए, ऋषभ शूद्र हो गए तो वे वन में चले गए, राजधानी छोड़कर ऋषि हो गए, भगवान का भजन करने लगे। और कभी उनका भाई था, वो छोटी अवस्था में ही भाई के साथ वन में चला गया, ईश्वर अवस्था में ही उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इक्ष्वाकु महाराज जो 10 पुत्र प्राप्त किए, उनमें एक पुत्र का नाम तीन था, ककुष्ठ, इंद्रवाह और कुरंजय। तीनों नाम के पीछे तीन कारण। एक बार सतयुग के अंत में दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ। देवता और दानव में युद्ध होता ही रहता है। देवों की तरफ से इंद्रदेव थे प्रधान, जैसे देव की इच्छा देवता हारने लगे युद्ध में। प्राय सब समय देवताओं की विजय होती है, लेकिन इस युद्ध में फिर हारने लगे। कोई भी उपाय करके इंद्र विजय नहीं हो रहे। इंद्र देव ने ब्रह्मा जी से कहा, देव आपकी सिपाही बताए। उस समय के राजा मनुष्यों में इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इक्ष्वाकु के पुत्र से कहो। तो इंद्र ने कहा, देवताओं ने सहायता के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने शर्त कर दिया, यदि इंद्र हमारा वाहन बनेंगे तो उन पर सवारी करके मैं युद्ध कर सकता हूं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, देवताओं का बहुत बड़ा हित करना है, इसके लिए तुम बात मान लो, तुम वाहन बन जाओ। लेकिन इंद्र बनना नहीं चाहते। अंत में स्वयं भगवान ने कहा, तुम बन जाऊंगा। इंद्र बहुत बड़ा सांड बने, बहुत बड़ा बैल, जिनका ककुत गर्दन के बाल, गर्दन पिंड, गर्दन का मांस बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सांड बने। और इक्ष्वाकु पुत्र उन पर सवारी किए, धन पर चढ़ गए, इंद्र पर चढ़ गए। और ऐसा बाण वर्षा उन्होंने किया भगवान की कृपा से, दैत्यों की बहुत बड़ी पराजय हुई। निहार करके अपनी राजधानी, अपना धन, पैसा सब छोड़ करके भाग गए। राजा दैत्यों के सारे नगर को बस कर लिए, उनके धाम को। इसलिए दैत्यों की पराजय के कारण इनको संज्ञा मिले, पूरा पूरन जय, पूरन जय। बड़े बड़े नगरों को जीतने वाले और बैल के ककुद पर बैठने का उनको ककुष्ठ कर। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के लिए ककुष्ठ समझा है, ककुष्ठ के वंश निगम में। ऐसे प्रतापी राजा जिनके लिए देवराज इंद्र भी वाहन बने, बैल बने, ये है अद्भुत चरित्र। इसी वंश में अम्बरीश महाराज थे, जब नारायण के पुत्र उमरीश महाराज बहुत बड़े महत्व थे। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र वहीं रख दिया था, कभी काम आएगा। एक बार की बात है, महाराज अम्बरीश मधुबन है, वृंदावन के पास एक मधुबन है, तो बहुत प्राचीन काल से बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बना है। तुम्हारे यज्ञ किए, यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत दान दिए और 60 करोड़ गऊ का दान किया। इसमें भारत पर भी सब जगह डोमी होती है, क्षेत्र ही सारा भारत है। तुम्हारा अम्बरीश 60 करोड़ गऊ का दान दिए, बहुत बड़ा फीस दिए, भोजन कराए, तीर्थ में द्वादशी व्रत किए। द्वादशी व्रत का है दसवीं से चालू करके पूरा एकादशी और पूरा द्वादशी तक उपवास रहना, और द्वादशी को अंत में पालन करना। महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ व्रत किए थे, ब्राह्मणों को दान देने के बाद, सबको भोजन कराने के बाद वे पालन के लिए तैयार थे। द्वादशी का समय बहुत कम था, उसी समय दुर्वासा मुनि जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है, बड़े तेजस्वी, बड़े क्रोध, उनके यहां आए अतिथि बने। महाराज ने स्वयं प्रार्थना करके उनको भोजन के लिए राजी किया। एक क्रोध ठीक है, मेरा संध्या का नियम पूरा नहीं हुआ है, मैं नियम पूरा करके आऊंगा तब खाऊंगा। तो दुर्वासा जी का स्वभाव था कि दूसरों को दुख देते थे, उनको बड़ा जवन था इस बात का। अम्बरीश एक गृहस्थ है, उसका बहुत बड़ा नाम है, तो एक काम करें, इसका द्वादशी व्रत खंडित कर देंगे, पारण समय पर न करता हूं, बिना ब्राह्मण को भोजन कराए पारण कर दें। ये टेंडेंसी थी दुर्वासा जी, इसलिए जमुना जी के धारा में गए और मनमाना देरी करने लगे। इधर ब्राह्मणों से परामर्श करके श्री अम्बरीश महाराज उसने क्या करना था, द्वादशी का पालन न करना है, ये भी मेरे का अपराध है, और ब्राह्मणों को बिना खिलाए खा लेना ये भी अपराध है, क्या करें कि हम मेरा व्रत पूरा हो जाए, ब्राह्मण का अपराध लेना। तब वशिष्ठ जी ने बताया महाराज आप भगवान का चरणामृत पी करके पालन कर लीजिए, ये बहुत देरी कर रहा है जो वर्षा जी, हो सकता है आपका व्रत खंडित हो, व्रत नहीं पूरा हो ये भी ठीक नहीं है, इसलिए तो श्रमावृत पी लेना व्रत पूरा करने की दृष्टि से खाना है, और ब्राह्मण को बिना खिलाए खा लेना, इसीलिए पानी पी लेना भोजन नहीं है, नहीं भोजन। तो ब्राह्मणों के परामर्श से महाराज ने केवल जल पी लिया थोड़ा सा श्रणाम में, पर दुर्वर्षा मनवाना देख सके आए जो वर्ष है उन्होंने देख लिया कि राजा इतना प्रसन्न है, उसका अर्थ है कि पालन कर लिया। इतने से ही उनको बहुत बड़ा क्रोध आया, उनका शरीर कांपने लगा, भावे तेरे गले लगे, इस दंड राजा को मैं दंड दूंगा। इसका पाप देखो, एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के अब थोड़ी देर नहीं रुक सकता था, वे जटा उखाड़े उखाड़ करके मंत्र से पटके पेशी पर उससे बहुत बड़ी राक्षसी कृपया उत्पन्न। महाराज अम्बरीश को मारने चली तलवार हाथ में लेकर, उसके शरीर से आग निकल रही, नेहरू मारने के लिए चली, तभी चक्र आकर के उसको जला दिया। कृत्या को तो जला ही दिया, अब दुर्वासा की ओर झपटा। महाराज अम्बरीश देव के तेव खड़े रहे, कृत्या से डरे नहीं, भगवान को उनको विश्वास, कृत्या को नष्ट करके चक्र फिर इस मुनि के पीछे पीछे चला। उसमें अपार दाह है, करोड़ों सूर्य के समान दाह, अपने दाहिका शक्ति को अपने आंच को उगड़ कर उनके पीछे पीछे चल गया। दुर्वासा की टांग छोटी, पृथ्वी पर सब जगह, पहाड़ में, समुद्र में, स्वर्ग में भागते थे, अंत में कहीं कोई शरण नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी के पास गए, बोला ये ब्रह्मा जी, यही आत्मजीवनी, आप अजीत के अस्त्र से हमारी रक्षा की। तो ब्रह्मा जी कहता है पहले तुम यहां से भागो जल्दी, बहुत को ज्ञान से मारना चाहते थे, यह भगवान का अस्त्र है, अगर तुम यहां रहोगी तो ऐसे अपराधी को सरल होने का मेरा लोक जल जाएगा। अब भाग करके कैलाश जाएंगे जहां शिव जी रहते, वहां जाने पर भगवान शिव ने वही बात कहा जो ब्रह्मा जी कहे। लेकिन शिव जी ने एक रास्ता बताया, जिनका ये अस्त्र है उन्हीं के शरण में जाओ, और कोई नहीं बचा पाए। तो दुर्वासा अंत में बैकुंठ है, बैकुंठ में कोई जवन नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन दुर्वासा को वहां भी ताप हो रहा, रो रो करके भगवान शिव से कहने लगे, आप हमको बचाइए, आप हमको बचाइए। इतना कहा नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। तो दुर्वासा अंत में वैकुंठ गए, कांप रहे थे, उनके शरीर से रक्त बह रहे थे जलन के कारण। भगवान के चरण को पकड़ करके कहा, हे प्रभु, आपका नाम लेने पर तो नारकी जीव भी नरक से बच जाता है। आप हमारा प्रण कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, अवश्य मैं शरणागत में हूं, भाई हारी हूं, शरण में आए हुए का भाई देव करता हूं, लेकिन भक्त जो ही का मैं त्याग नहीं कर सकता। तो भक्त अमरीश को मारना चाहते थे, और अपने में अमरीश मानता देखो, अमरीश कृपया के डर से एक पल नहीं आता नहीं, और तुम चक्र के डर से तीनों लोग में घूमते रहे, तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। दुर्दर्शन ने यहां कह दिया, आप ब्राह्मण के भक्त हैं, ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि लेकिन भक्त दो ही से नहीं। देखो ब्राह्मण, मुझे वही ब्राह्मण प्रिय है, मुझे विद्या है, विद्या के साथ नम्रता भी है, तुमने नम्रता का अभाव है। मर रहे थे खाने में, थोड़ी देर मर जाते, तुमको तो जो मान नहीं दिया गया, वो भी भक्ति के कारण। तो जिस ब्राह्मण में अभिमान आ जाता है तो उसकी विद्या और उसकी तपस्या बेकार है। यदि विद्या और तपस्या भी हो और नम्रता भी हो तब तो ठीक, तुम में इसका अभाव है, मैं तुम भारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं रक्षा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भाव के अधीन हूं। तो तुम यदि बचना चाहते हो तो इन्हें अम्बरीश के चरण में गिरी रहो, अम्बरीश का चरण पकड़ो। दुर्वासा मरता काम नहीं करता, लौटे अयोध्या। अम्बरीश महाराज के चरण में गिरने लगे, ये तो पीछे हट गए, पीछे हट करके अपने सख से प्रार्थना करने लगे। कई प्रकार के प्रार्थना, यदि मैं ब्राह्मण को इष्ट देव मानता हूं तो चक्र शांत होंगे, लेकिन चक्र शांत नहीं होंगे। उनके महाराज ने कहा कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो चक्र शांत होंगे, तो चक्र शांत होंगे और केवी में चलेंगे। तो यह है अद्भुत शरीर, परम अद्भुत। दुर्वासा जैसे अपराधी के प्रति भी कृपा रखना, वैष्णव में ऐसा स्वभाव होता है, उसको मारने के लिए कृपया उत्पन्न किया है। इस दुर्वासा के प्रति ऐसी दया अन्य तो नहीं मिल सकती, यह सूर्य वंश के राजाओं का अद्भुत चरित्र भगवान ने खुद ही गीता में कहा है। ये काम कामना आग है, दुष्पुर रहना निगम दुष्पुर अमल है, ऐसी आग है पूरी नहीं होती। चंद्र वंश के दो राजाओं का मैं इतिहास सुनाया, इसने यही सीखा है कि ये जो काम वासना है इसका कभी अंत नहीं है, कामना कभी पूर्ति नहीं हो सकती, पूरा करने के फेर में पड़ेगा, वो भी जलेगा जलता रहेगा, जो स्कूल अनुभव है। यदि सूखे ईंधन पर घी डाला जाए तो इससे वो शांत नहीं होगा और आग बढ़ेगी, जितनी आग बढ़ेगी उतनी ही आंच निकलेगी, जितनी आंच निकलेगी उतनी ही जलना पड़ेगा। संसार में आज तक किसी की कामना पूरी हुई नहीं, एक कामना पूरी हुई तो अन्य कामनाएं जन्म लेती हैं। महाराज जजाति अंत में अपनी पत्नी से बकरा बकरी की कथा कहते हैं, अपने को कहते हैं मैं ठीक बकरा है, अब तुम्हारे साथ में 1000 वर्ष तक रहा लेकिन दिन पर दिन मेरी वासना बढ़ती गई, ते शिक्षा है कभी कामनाओं को पूरा करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जितना भगवान ने दिया है स्वाभाविक उसी में गुजारा कर ले, अधिक के लिए प्रयास न करें। अधिक के लिए प्रयास करने का अर्थ है कि अधिक आंच उत्पन्न करना, अधिक जलना, अनेक बार जन्म होगा, कभी स्त्री का शरीर मिलेगा कभी पुरुष का, लेकिन सब समय जीव जलता रहता है। शिक्षा मिलती है बड़े बड़े राजाओं के शरीर से, उनको शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? जब वन में चले गए भगवान की भक्ति करने लगे। प्राय राजाओं के विषय में यही पता है, जब राजा थे तब कोई शांति नहीं, चौथे पंड कानंद चौथे पंड राजा अपनी राजधानी को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर अपनी पत्नी को छोड़कर कानंद में कानंद चले जाते थे, मन में रहते थे। तपोवन में संसार का धर्म स्वाभाविक होते रहेंगे, जन्मना मरना लगा रहेगा, सभी परिस्थितियों में भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बस एक ही स्थिति में सुख है, राम नाम लेने में, और कहीं सुख नहीं, दुख ही दुख है। महाराज अम्बरीश अपने सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। सोए मन कृष्ण पदारविंद मशान सेवा पंचमान बना, वे अपने मन को भगवान के रूप में रखते चिंतन में अपने वाणी को भगवान के गुणानुवार में, तो दूसरे की वाणी को अपने कान में रखना। अन्य वैष्णव जब कथा कहते हैं तो उसको सुनना चाहिए। कदम हरे मरने वाले मन अपने दोनों हाथों से हरि के मंदिर के बाजे लगे करना, मुकुंड लिंगा लेकर दोनों हाथों से भगवान के श्री विग्रह को देखना चाहिए और अपनी जीवा को भगवान के प्रसाद में दसना प्रदान पीते हैं। शिव को प्रणाम करने वाला तो सुख यहां है, भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के कीर्तन सुनने में। जय श्री प्रभुपाद।
कि मैं माता पिता हो सकी किसी माता शांत भगवान ही किसी कृष्ण भगवान ही विमान सुंदर भी भगवान ही।